नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉसिक हो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, ये बात करता है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इमोशनल इंटेलिजेंस की, भावनात्मक शिक्षण की कितनी आवश्यकता है, क्या रोल अदा करता है, क्या भूमिका अदा करता है ये एम्पैथी, उसके बारे में ही हम बात करेंगे इस आर्टिकल में। बहुत अच्छा आर्टिकल है, हम एक विस्तृत इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये बात करता है कि कोविड के दौर में हमारे अर्बनाइजेशन और अर्बन सिटीज़ के जो मॉडल है, जो हमारे शहरों के मॉडल है, ये धराशायी हो गए अपने आप में। काफ़ी ज़्यादा हमें हमारे माइग्रेंट वर्कर्स के साथ में इनजस्टिस होते हुए दिखा। ये एक मौका है, कोविड ने एक मौका दिया है कि हम हमारे इन अर्बन मॉडल्स को सुधारें और एक ऐसा मॉडल लेकर आए जो सबके लिए समावेशी हो, बहुत इंक्लूसिव मॉडल पर बेस्ड हो। तो उस बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहें तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। चलिए पहले आर्टिकल पे आते हैं, जो कि बात करता है कि एम्पैथी थ्रू एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सोशल इमोशनल लर्निंग की बात की गई, कि भावनात्मक शिक्षण की बात यहाँ पर की गई, सामाजिक भावनात्मक शिक्षण की, जो कि ज़रूरी होता है एम्पैथी को डेवलप करने के लिए। अब ये जो SEL है, सोशल इमोशनल लर्निंग है, इसका एम होता है कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना, कोलैबोरेशन लोगों के बीच में, या टीम में अगर हम जब काम करते हैं तो उस रिलेशंस को बढ़ाना, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना, उसके अलावा क्रिएटिविटी, जो हमारी रचनात्मकता है, उसको भी बेहतर बनाना। अब बात यह है कि SEL के साथ में क्या इश्यू है। सबसे पहली बात तो ये हुआ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, तो यहाँ पर एक दिक्कत ये हो गई कि 2020 में ही हमें COVID-19 की महामारी देखने को मिली। तो इस COVID-19 के महामारी के चलते हुए जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता था वो कम हो गया। उसके अलावा जो एक आप टीम गतिविधियाँ देखते थे, ग्रुप एक्टिविटीज़ देखते थे, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग में भी कमी आ गई, जिसके चलते हुए जो एक मुख्य सिद्धांत हुआ करता था सोशल इमोशनल लर्निंग का, वो कहीं पीछे रह गया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा बेस रहता है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट ये है कि पेरेंट्स आर एबल टू स्पेंड मोर टाइम विद देयर चिल्ड्रन एंड नो ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एक अच्छा पहलू ये मिला कि जो पालक है, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें बच्चों के साथ में और समय व्यतीत करने और उन्हें जानने और उनकी रुचि दिलचस्पी जानने का मौका मिला है। अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या है, कुछ समस्या हमें देखने को मिली है सोशल एजुकेशन, सोशल इमोशनल लर्निंग में, जो कि पार्ट है NEP का, यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, तो इसमें कुछ कमियाँ, कुछ खामियाँ भी है, कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो उस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जिस तरीके की सोशल इमोशनल लर्निंग है, ये किसी भी बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार रहनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग अलग बच्चों की होती है, और उस हिसाब से उन्हें इमोशनल लर्निंग की अलग अलग तरीके से आवश्यकता होती है। उसके अलावा जो हमारे एडुकेटर्स हैं, जो हमारे केयर टेकर्स हैं, यहाँ पे मतलब पेरेंट्स की भी भूमिका हो गई, टीचर्स की भी भूमिका हो गई, तो इनके और से भी एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर दो चीज़ हो गई, पहले तो हम ये देखते थे कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता था ये केवल टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जब हम सोशल इमोशनल लर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़रूरी है कि एडुकेटर्स के साथ में इनके पेरेंट्स का, इनका अभिभावक का, इनके केयर टेकर्स का भी रोल बड़ा हो जाता है और वो इस लर्निंग में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उसके अलावा जो भी लर्निंग हो, ये विज्ञान की पद्धति से हो, साइंटिफिक मॉडल्स पे बेस्ड हो। उसके अलावा इसे सतत विकास लक्ष्य जो है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसका एक पार्ट बना के हमें इसे चलना आवश्यकता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा इक्विटेबल इक्वालिटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एजुकेशन, हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल बात करते हैं तो यहाँ पे शिक्षा सबको मिले इसकी हम बात करते हैं, लेकिन सबको शिक्षा जो मिले वो एक क्वालिटी एजुकेशन भी होना ज़रूरी है, और वो क्वालिटी एजुकेशन तभी बनेगा जब हम एम्पैथी जैसे एलिमेंट, सोशल इमोशनल लर्निंग जैसे एलिमेंट हमारी शिक्षा पद्धति में शामिल करेंगे। उसके अलावा इंडिविजुअल एफर्ट्स आल्सो हैव टू बी मेड फॉर बेटर इनएक्टमेंट ऑफ SEL गाइडलाइंस। तो ये तो सरकार के स्तर पर, ये सिस्टम के स्तर पर बताया गया इस आर्टिकल में कि प्रयास हो गए, हमें व्यक्तिगत लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर भी इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर आप अभिभावक हैं तो आपको इस मामले में ज़्यादा भावनात्मक सेंसिटिव होने की आपको आवश्यकता है। अगर आप एल्डर ब्रदर या सिस्टर है, तो आपको जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके टूवर्ड आपको ये इमोशनल लर्निंग और इससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में सेंसिटिव होना ज़रूरी है। तो हमारे लेवल पे भी हम बहुत कुछ हमारे जो एक्सपीरियंसेस से जो अनुभव से सीखते हैं वो भी हमें आगे पास ऑन करना, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। चलिए दूसरे आर्टिकल के और आते हैं जो कि बात करता है अर्बनाइजेशन के बारे में। कोविड के दौर में हमें देखने को मिला कि इस तरीके से हमारे अर्बन सेंटर्स जो हमारी मेट्रो सिटीज थे जो शहरी केंद्र थे ये इन्फेक्शन का एक हॉटस्पॉट बन गया और यहाँ पर बड़ी दिक्कत ये देखने को मिली कि बहुत से मजदूर जो यहाँ पर माइग्रेट होकर आए थे उनको पलायन करना पड़ा, बहुत सारों के साथ में हादसा भी हुआ और इन्फेक्शन का जो रेट है वो इन बड़ी सिटीज़ में बहुत लंबे समय तक रहा। अभी कुछ जाँच ये स्थिति थोड़ी बेटर होने लगी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक और ओपिनियन ये बना शहरी क्षेत्रों में, खासकर जो शहरी क्षेत्रों के लोग थे उनका ये मानना पड़ा कि जो लोग माइग्रेट होके आते हैं वो विपत्ति के समय यहाँ पे से चले जाते हैं, जिसका परिणाम इन शहरों को लॉन्ग टर्म के लिए झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा नेगेटिव यहाँ पर इम्पैक्ट भी पड़ा है, एक नेगेटिव थिंकिंग भी बनी है माइग्रेट होकर जो आते हैं उनको लेकर। तो यहाँ पर उसी चीज़ को एड्रेस करने की बात की गई। इसके पीछे जो मुख्य बात थी, जो समस्या थी, वो ये थी कि हमारा जो अर्बन मॉडल्स है, अर्बनाइजेशन का जो हमारे देश में मॉडल है, ये जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस है, क्या चुनौतियाँ हैं? सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम देखें तो हमारे सिटीज़ में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है गाँवों से। इसके पीछे कारण बहुत से हैं। सबसे पहला कारण रहता है इकोनॉमिक रीजंस के कारण, क्योंकि आय या एम्प्लॉयमेंट के स्रोत गाँवों या कस्बों में नहीं मिल पाते हैं, इसको देखते हुए लोग बड़े शहरों में पलायन करते हैं। अब इस पलायन में होता ये है कि घर का जो कमाऊ सदस्य रहता है वो तो बड़े शहर में पलायन कर देता है, लेकिन उनकी फैमिलीज, खासतौर महिलाएं जो है वो गांवों में रह जाती है, वो विलेजेस में रह जाती है। तो इससे समस्या ये देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो फैमिली ब्रेकडाउन होता है, उसके अलावा इसके काफ़ी ज़्यादा सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं जब आपका फैमिली इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है। इससे बहुत सी चीज़ें लीड कर सकती है, जैसे जो मजदूर यहाँ पर काम करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट होता है, जो गाँवों में जिनके परिवार रह रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अफेक्ट उसका देखने को मिलता है। उसके अलावा बात की गई है कि हमारे देश में ना प्रॉपर लॉ नहीं है कोई अर्बनाइजेशन या अर्बन मॉडल्स को लेकर। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो जितना फंड एलोकेशन होना चाहिए उस हिसाब से फंड एलोकेट नहीं होता है, अगर एलोकेट भी होता है तो उस हिसाब से खर्च नहीं होता, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मुंबई जैसे शहर का उदाहरण रहे ले तो मुंबई में जो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है ये स्लम्स में रहती है। इससे ये पता चलता है कि हमारे इन शहरों में स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे इन शहरों में आधारभूत ढांचा ही नहीं है जहाँ पर लोग कम से कम अपने घर जिसे कह सके। तो इसी को चलते हुए यहाँ पे बात की गई है कि फंड्स की अगर हम बात करें तो बजट स्पेंडिंग जो है कि जिस तरीके से बजट मिलता है उसको ठीक से व्यय नहीं किया जाता है। 40 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ 28 स्टेट्स में, बड़ी सिटीज़ के इन अर्बन सेंटर्स में, लेकिन इसमें से अगर खर्च करने की बात की गए तो केवल 3.7 लाख करोड़ ही स्पेंड हुआ है। इससे पता चलता है कि हमारे पास में जो रिसोर्सेस आ रहे हैं हम उसका ठीक से यहाँ पे एलोकेशन ही नहीं कर पा रहे, उसको खर्च नहीं कर पा रहे। तो नया मॉडल लेकर आना या उसमें सुधार लाना एक बहुत दूर की बात होती है। उसके अलावा हमारे देश में अगर हम देखें तो फेडरल सिस्टम है, संघवाद है, सेंट्रल की कुछ पावर है, स्टेट की कुछ पावर है। अगर हम देखें सेंट्रल स्टेट में तो दोनों में रूरल और अर्बन मिनिस्ट्रीज रहती है, लेकिन इनके अगर पॉलिसी भी काफ़ी बनती है, लेकिन जब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो यहाँ पर काफ़ी खींचतान देखने को मिलती है। तो आवश्यकता फिर वापस से ही आ जाती है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय होना चाहिए और साथ में इन्होंने पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स लेकर आने की आवश्यकता है। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक काल में जो एक सिस्टम बना था हमारी लोकल गवर्नमेंट्स का, उसी तरीके की लोकल गवर्नमेंट जो है क्षेत्रीय सरकार है वो इस तरीके से है। जैसे लोकल गवर्नमेंट अर्थात यहाँ पे जो हमारी नगर निगम ये है, तो इस तरीके की ही हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इनको इतनी इंडिपेंडेंस, इतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। जितने भी इनके फंड्स के एलोकेशन है मेजॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं उनकी एड एंड एडवाइस पे ही ये काम करते हैं कि जो स्टेट में गवर्नमेंट है उसके अनुसार ही लोकल गवर्नमेंट जो होती है, नगर निगम या महानगर पालिका हो गई या महानगर निगम हो गई, तो इनको काम उसी तरीके से उनके हिसाब से ही करना पड़ता है। दूसरे शहरों की अगर हम बात करें जो कि भारत के बाहर है, तो यहाँ पे जो मेयर होता है, जो वहाँ की म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, इनको काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता सिर्फ निर्णय लेने की नहीं है, उसके अलावा जो आर्थिक स्वतंत्रता भी रहती है, ये खुद से कर वसूल कर सकते हैं, खुद के फंड्स रेज कर सकते हैं, जिससे इंडिपेंडेंस जो है इनकी अपने आप में बढ़ती है। लेकिन भारत में ये स्थिति देखने को नहीं मिलती है। तो फिर कितना भी कोई अच्छा मेयर आ जाए, लेकिन अगर उतनी स्वतंत्रता नहीं है तो उस तरीके से काम होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि जिस तरीके से अच्छे लोग जो है वो भी नहीं आ पाते हैं, उसके पीछे थोड़ा उदाहरण दिया गया है कि जिस तरीके से हमारी प्रणाली बनी हुई है वो भी उसका एक कारण है। उसके अलावा इस आर्टिकल में बताया गया है कि एक अच्छा अर्बन सेंटर क्या हो सकता है। शहरीकरण की जब हम बात करते हैं तो क्या चिन्ह है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये एक अच्छा उदाहरण है शहरीकरण का। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और दलित के साथ, दलित अर्थात जो निम्न सामाजिक वर्ग के लोग हैं उनके साथ। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर जो हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, शिक्षा व्यवस्था है, उनमें भी बेहतरी होनी चाहिए। बहुत से अर्बन सेंटर्स में अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स जो रहते हैं ये इंग्लिश मीडियम रहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो रहते हैं ये भी इंग्लिश में, इसके पेपर्स आते हैं, एग्ज़ाम्स भी अंग्रेजी में होते हैं। तो यहाँ पे जो लोग गाँवों से पलायन करके यहाँ पर आए हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो कई मामलों में पीछे छूट जाते हैं। उसके अलावा एक और बात ये की गई है, जैसे पावर की बात की गई कि लोकल गवर्नमेंट्स के पास में ज़्यादा पावर होती है, फंड्स की भी पावर होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर इनका आधारभूत ढांचा जो है वो भी बेहतर होता है। अब बात की गई है कि व्हाट हैपन इफ वी कट डाउन ऑन अर्बनाइजेशन। अगर हम अर्बनाइजेशन पे कट डाउन करें, अगर हम हमारे शहरों पे इतना ध्यान नहीं दें, हम गाँवों की तरफ ही दें, क्योंकि हमारी आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है ये गाँवों में ही रहती है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें तो इन गाँवों से जो GDP कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ से जो हमारी GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ये काफ़ी कम होता है, 20% से भी कम अनुपात है, कि जहाँ पे हमारी 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन रहती है वो बमुश्किल 20% से भी कम यहाँ पर हमारी GDP में, हमारी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो अगर आपको पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है तो ज़रूरी है कि आपको आपके शहरी केंद्रों को और ज़्यादा मजबूत और एक अच्छे मॉडल में ढालना ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं देखने को मिलता है, कानून व्यवस्था उतनी जगह पर नहीं है, यहां पर चंद लोगों के हाथों में ही शक्ति रहती है, बहुत ज़्यादा माफियाज देखने को मिलते हैं, यहां पर जातिवाद भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जो आर्थिक रूप से संपन्न होता है उसी के पास में ज़्यादा गाँवों में पावर देखने को मिलती है। तो एक इंडिपेंडेंस के लिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, एक समानता की भावना के लिए लोग शहरों में पलायन करते हैं जहां पे उनको इन सारी चीजों का, सामाजिक बहिष्करण का सामना नहीं करना पड़े। उसके अलावा एक और बात ये की गई है कि अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक चीज जानना जरूरी है कि बहुत से हमारे अर्बन सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। उदाहरण दिया गया है कि टोक्यो में जापान की 1/3 जनसंख्या रहती है, लेकिन यहाँ पे कम्यूट टाइम की अगर हम बात करें तो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। वही बहुत दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें हम, या बैंगलोर या पुणे जैसे शहरों की बात करें, तो यहाँ पर कहीं कहीं कम्यूट्स जो डिस्टेंस है ये 2 घंटों से भी ज़्यादा होता है, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी पर्सन की मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और उसकी क्वालिटी लिविंग को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके अलावा ऐसा नहीं है, इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि सिंगापुर का अगर हम जनसंख्या घनत्व देखें तो वो जनसंख्या घनत्व अगर हम भारत में अप्लाई करें तो भारत की पूरी जनसंख्या केरला जैसे छोटे राज्य में एकोमोडेट हो सकती है। तो यहाँ पे जगह का भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि आप आपके रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज और यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो डिस्कशन है वो यही समाप्त होता है। आप हमें ऑडियो फॉर्म में हमारे अलग अलग पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पे भी सुन सकते हैं, वहाँ पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का हमारा एक नया पेज लॉ सीखो लॉ फाइनेंस शुरू हुआ है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट विजिट कर ही सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।